Se tem guerra. Namo Arihantaram.
Namo Arihantaram.
Namo Siddharam.
Namo Siddharam.
Namo Airyanam.
Namo Airyanam.
Namo Vajjayanam.
Namo Vajjayanam.
Namo Loi Sabhasahunam. देव श्री शांतिनाथ भगवान जिनवाणी माता आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन दृषद स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसंपत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता वरं व्रतैः पदन्दैव नाव्रतैर्वतनारकम् छायातपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौः कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्युः क्रोशार्धे किं सीदति ऋषीकजमनातङ्कम् दीर्घकालोपलालितम् नाकेनाकौ कसां सौख्यम् नाकेनाकौ कसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनाम् तथा ह्युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानम् स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानाम् यथा मदनकूद्रवै वपुर्गृहं धनन्दाराः पुत्रामित्राणि शत्रवः सर्वधान्यस्वभावानि मूढ़स्वानिप्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षुप्रगे प्रगे विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्याम् स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरञ्जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ विपद्भवपदावर्ति पदिकैवातिबाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्जीनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरमानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्तवत् आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतान्धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरान्धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति आरम्भे तापकान् प्राप्ता वतृप्तिप्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः भवन्ति प्राप्य यत्सङ्ग मशुचीनि शुचीन्यपि सकाय सन्ततापाय तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्
बातचीत न करते हुए आप उनको जो श्लोक निकाल करके देना है ना वो चुपचाप मौन से भी निकाल के दे सकते हैं बोलने से आवाज यहां तक आ जाती
है इतश्चिंता मणिर्दिव्य इतः पिण्याक खंडकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य तनुमत् स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य
सुव्यक्त मत बोलो सुव्यक्त सु पे स्वराघात करना है
स्वसंवेदन
सुव्यक्तस्य सुव्यक्त मत बोलो
स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य
स्वसंवेदन एक बार में बोलो अलग बोलो सब एक साथ बोलने की कोशिश करोगे ना तो एक साथ एक लड्डू कोई नहीं खा सकता उसको तोड़ करके खाना पड़ता है उसी प्रकार इसका उच्चारण जो है ना एक साथ करने की कोशिश मत करो स्वसंवेदन को अलग अपने मन में उसके विभाग बना लो स्वसंवेदन को अलग कर दिया फिर सुव्यक्तस एकदम सरल हो गया वो। स्वसंवेदन सुव्यक्तस, कैसा क्या हो रहा है? सुव्यक्तस, बस स्वसंवेदन सुव्यक्तस, सुव्यक्तस, सुब इस पर जोर दीजिए, स्वसंवेदन सुव्यक्तस, तन्मात्रो निरत्ययः, अत्यंत सौख्यवानात्मा, लोकालोक विलोकनः। अब ये उच्चारण की जो कमी रह जाती है उसके कारण बहुत सारे लोग मंत्रों की आराधना करते हुए भी उसके साइड इफेक्ट्स में चले जाते हैं, जो नुकसान होता है ना उससे, गलत उच्चारण से। हमने कई स्थानों पर देखा चत्तारी मंगल का गलत पाठ करने वालों के जीवन में कितने संकट आ जाते, भयंकर संकट आते। तो उच्चारण जो है शुद्ध रखना चाहिए। और फिर अभी कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो उच्चारण जो नहीं है उतना सुधरवा देते। जैसे अभी एक बार मीटिंग बनी बैठी थी पिछली शताब्दी में, तो उसमें सब विद्वान लोग बैठे और उन्होंने ये तय किया कि जैन समाज जो है प्राकृत भाषा में अंगूठा छाप है, जैन समाज को प्राकृत भाषा आती नहीं, इसलिए जो पुराना पाठ चला आ रहा है चत्तारी मंगल का वो गलत पाठ है, फिर भी उसका पाठ करती है जैन समाज। तो उनने क्या किया कि उस पुराने पाठ को सुधार दिया व्याकरण से, और सुधार करके अब सब किताबों में वही नया वाला पाठ छाप दिया चत्तारी मंगल का। तो आज जितने लोग पढ़ते हैं अधिकांश लोग वो सब नया पाठ पढ़ते हैं जो पंडितों का सुधार हुआ है, और जो आचार्यों के ग्रंथों का मूल पाठ है वो पता नहीं अभी लापता जैसा हो गया। अभी कुछ महाराज लोग पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, सुधा सागर महाराज श्री से हमने निवेदन किया कि महाराज श्री आप जो नया पाठ पढ़ रहे हैं वो नया पाठ ग्रंथों में तो मिलता नहीं है, पंडितों का सुधार हुआ पाठ है। तो फिर सुधा सागर जी ने बोला कि तुम मुझे दिखा देना ग्रंथों में कौन सा पाठ है। तो फिर हमने ज्ञानार्णव, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा और फिर शब्दार्णव आदि बहुत सारे रेफरेंस दे करके उनको जब दिए पाठ, तो फिर सुधा सागर महाराज श्री ने वो नया पाठ छोड़ दिया। अभी तारंगा की बात है, फिर सूरत में उनने बिल्कुल पूरी तरह से वो नया पाठ छोड़ करके पुराना पाठ पढ़ना प्रारंभ कर दिया। और फिर हमने महाराज श्री से ये भी कहा कि विद्वानों की गोष्ठी भी होती है आपके यहां पर, तो वहां पर भी अगर कोई विद्वान नए पाठ के पक्ष में कोई बात रखेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? तो सुधा सर महाराज श्री बोले कि मैं उनसे ये पूछूंगा कि अगर ये नया पाठ शुद्ध है और व्याकरण के अनुसार यही समुचित है, तो फिर मैं उनसे ये पूछूंगा कि जो पुराने आचार्य थे जिन्होंने वो पुराना पाठ रखा उनको प्राकृत भाषा नहीं आती, वो बिल्कुल प्राकृत भाषा नहीं जानते थे इसलिए उन्होंने वो पुराना पाठ रख लिया, और फिर आप लोगों ने नया पाठ इसलिए सुधार दिया, सुधार करके नया पाठ इसलिए बना दिया कि आपको आती है प्राकृत। और प्राकृत भाषा में भी कितने सारे भेद है, जैन प्राकृत जो है उसमें 5 प्राकृतों का मेल है, एक तो मूल प्राकृत शौरसेनी, पिशाय पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी, इतनी सारी मतलब 5 प्रकार की प्राकृत भाषाओं को मिक्स करके अपनी जैन प्राकृत चलती। और नमोकार मंत्र में भी कई लोगों ने संशोधन किया। एक बार एक विद्वान ने लिख दिया अपनी पत्रिका में कि नमो अरिहंताणम खोटे सिक्के की तरह चल रहा है बोले पाठ। फिर उसका जवाब एक दूसरे विद्वान को देना पड़ा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कम से कम नमोकार के प्रति मत करो, और नमो अरिहंताणम जो पाठ है वो व्याकरण से और शास्त्रों से शुद्ध पाठ है। ये उनको सिद्ध करने के लिए फिर अलग लेखमाला चलानी पड़ी। और उनका पहले वाले विद्वान का कहना ये था कि नमो अरहंताणम शुद्ध, अरहंताणम, अरहंत का अर्थ होता है पूज्य और अरिहंत का अर्थ होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। तो फिर वो शत्रुओं को नष्ट करने वाली बात उन विद्वान के मतानुसार हिंसा वाली बात, क्योंकि नष्ट करना, तोड़ना, फोड़ना, छिंद भिंद, ये सब जो शांति धारा, इन सब बातों को लेकर के लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि ये सब हिंसक प्रयोग है। तो उनने फिर उसका समर्थन किया नमो अरहंताण, क्योंकि आपने सुना होगा नमो अरहंताणम ये भी पाठ है और फिर एक नमो अरिहंताणम भी पाठ है। तो उनने अरिहंत पाठ का निषेध करके अरहंत पाठ का समर्थन किया। ऐसे ही पंडित गोपालदास बरिया जी के स्मृति ग्रंथ में भी एक बड़ा लेख निबंध है, उसमें भी उन्होंने अरहंत पाठ का समर्थन किया और हम भी उससे प्रभावित हो गए थे किसी समय। लेकिन उसके बाद षटखंडागम की जो टीका है, षटखंडागम की धवला जो टीका है, उसमें आचार्य वीरसेन स्वामी ने अरिहंत शब्द का अर्थ दिया कि चारों गतियों में भटकाने वाला मोह जीव का वास्तविक अरि है, शत्रु है। उसको नष्ट करने के कारण भगवान को अरिहंत कहा जाता है। तो अब अगर आप अहिंसा के नाम पर उस मोह को नष्ट करने की बात भी ड्रॉप कर दोगे, छोड़ दोगे, तो फिर संसार भ्रमण तो निरंतर बना ही रहेगा। मोह को अगर नष्ट ना करेंगे तो क्या होगा, संसार में भटकना पड़ेगा। तो फिर नष्ट किसको करना और किसको नहीं करना, सिर्फ नष्ट करना, इस शब्द को लेकर के आप हिंसा और अहिंसा की व्याख्या नहीं कर सकते। किसको नष्ट कर रहे हैं और किसको नष्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्राणी के प्राणों को नष्ट करना और कषाय पूर्वक नष्ट करना हिंसा होती है। और यहां पर मोह को नष्ट करते समय कौन से प्राणी की हिंसा हो रही है, तो इसलिए उसको हिंसा कह करके उस पाठ को खोटा सिक्का नहीं कहा जा सकता। और अपन सब जगह एक ही बात तो करते हैं, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशन है, वहां विनाश शब्द आया कि नहीं तो पूजा करना बंद कर देंगे। काम वाण विध्वंसन है, अब ये विध्वंस शब्द आया, अब विध्वंस शब्द को अगर आप हिंसक कह करके छोड़ दो फिर मत करना पूजा। और देख लो आप, ऐसे पचासों स्थल आपको मिलेंगे कि जहां पर अपन ऐसी भावना करते हैं। सर्व शत्रु भयम छिंद छिंद भिंद भिंद, अब सर्व शत्रुओं के भय का छेदन करो, भेदन करो। अब ये छेदन भेदन वाली जो बात आती है, इसको भी हिंसा कह करके कई लोगों ने अलग कर दिया कि शांति धारा ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभिप्राय को समझना बहुत आवश्यक, अभिप्राय को समझे बिना, मतलब भावना को समझे बिना ये निर्णय करना अनुचित है कि ये शब्द हिंसक है। शत्रुता को नष्ट करना अहिंसा है और शत्रु को नष्ट करना हिंसा है। आगे समझ, अपने अंदर से शत्रुता को ही नष्ट कर दिया, क्षमा कर दिया, चलो तो क्षमा करना हिंसा है क्या? नहीं है। और अगर जाकर शत्रु को नष्ट कर डालो तो बराबर हिंसा। तो फिर यहां हिंसा और अहिंसा का ऐसा विपरीत विवेचन नहीं होना चाहिए। तुमने अरिहंत इस पाठ को ही निकाल दिया, बोले कि खोटे सिक्के के समान चल रहा है और अरहंत पाठ ही होना चाहिए। और अभी कुछ विद्वान लोग, पंडित लोग शिविर में भी ये बात बोलते हैं कि अरिहंताड़म पाठ मत किया करो, अरहंत पाठ किया करो, अरहंताड़म। तो पहली बात तो ये है कि जो जिन वाणी में से कुछ भी हटाने की बात करें, देखो एक बहुत सटीक पहचान एक विद्वान ने बताई थी कि किस बात को अपन स्वीकार करें और किसको अस्वीकार करें। तो जिनवाणी में से किसी बात को जो पृथक करने की बात करने वाला वक्ता हो उसकी बात को अस्वीकार कर देना। एकदम सरल पहचान बताइए, जो ऐसा बोले कि ये नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना, जो जिनवाणी में लिखा है उसके बारे में कुछ अपने तर्क वितर्क दे करके बोल दे कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो समझ लेना कि ये दो नंबर की बात है। एक नंबर की बात तो अरहंत परंपरा वाली है और दो नंबर की बात ये इनके दिमाग की बात है। कुतर्क करके आप कुछ भी सिद्ध कर सकते हो। दिवाली के दिन दिए को देखो आप, कितने जीव जंतु उसमें मरते हैं। अब बस उसका दृष्टांत लेकर के कोई ये सिद्ध कर सकता है कि जितने लोग आरती करते हैं वो यही पाप करते हैं, क्योंकि मरे हुए कीड़े को देख करके जो देखने वाला है वो क्षण मात्र के लिए भावुक होता है और उस भावुकता का अनुचित लाभ लेने वाला उस समय ये अपना डाल देता है विष। क्या कहेगा वो कि देखो ये कीड़े मरे ना दिवाली के दिए में, तो जो आरती करते हैं उसमें नहीं मरते होंगे क्या? मरते होंगे। वो भी बोलेगा हाँ मरते होंगे, ऐसे सिर हिलाकर। तो फिर बोलो आरती करना पुण्य है या पाप है? तो मात्र उस घटना को देख करके वो पुण्य और पाप का निर्णय कर लेते। इनको कहते हैं मंद मेधसाम। नीतिसार ग्रंथ में एक श्लोक आता आर्यकाणाम गृहस्थानाम शिष्याणाम अल्प मेधसाम न वाचनीयम पुरतः सिद्धांत आचार्य पुस्तकम। सिद्धांत ग्रंथ और आचरण ग्रंथ का वाचन इनके सामने नहीं करना चाहिए। किनके सामने? अल्प मेधसाम, अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि आरिकाओं के सामने। क्या होता है कि सबकी बुद्धि एक जैसी प्रखर तीक्ष्ण नहीं होती, तो जो मंद बुद्धि है आरिका, उन आरिकाओं के सामने सिद्धांत ग्रंथ और आचरण ग्रंथों का वाचन नहीं करना। और किनके सामने नहीं करना? गृहस्थाना, जो मंद बुद्धि गृहस्थ है, उनके सामने भी सिद्धांत ग्रंथ और आचार ग्रंथों का वाचन नहीं करना। नहीं तो बोलेंगे कुछ और वो समझेंगे कुछ, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। या फिर कभी कभी ये समस्या आ जाती है कि 15 मिनट बैठने का नियम था उनका, आए 15 मिनट बैठे तो न शुरू का सुना न अंत का सुना, बीच का सुन करके फैसला कर लिया कि हाँ यही बात है। तो ऐसे में फैसला सही होगा का गलत होगा, तो ये भी बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। और अगर साथ में वो मंद बुद्धि हो तो और मुश्किल है, सामान्य बुद्धि हो तो भी मुश्किल हो जाती है अगर व्याख्यान पूरा ना सुनो तो, और मंद बुद्धि हो तो और मुश्किल हो जाए, और ज्यादा बुद्धि वाला हो तो भी खतरनाक है, वो फिर अपनी तरफ से 4 बातें और जोड़ देगा उसे तो और मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए सही श्रोता बन जाना भी बहुत बड़ी बात है। वक्ता बनना सरल है, वक्ता माने कुछ भी बक देने वाला, कुछ भी बोलने वाला, बोलना बहुत आसान है लेकिन सुनना बहुत कठिन। सुनने के लिए बिल्कुल कोरी स्लेट बना करके बिल्कुल क्लीन होकर के सुनना पड़ता है, पूर्वाग्रह के साथ नहीं। जो यहां बता रहे हैं आचार्य महाराज वो सुनना है आपने, अपन जो जानते हैं वो थोड़ी उसमें मिक्स करना है। नहीं तो अपन जो कुछ जानते, अगर ऑल नोइंग मतलब अपन सब कुछ जानते हैं तो यहां बैठने की क्या आवश्यकता है, जिनवाणी सुनने की क्या आवश्यकता है? यहां बैठने का मतलब है कि यहां से कुछ बात हमें नहीं जानने मिलने वाली है। तो इष्टोपदेश की व्याख्या में इसके स्वाध्याय में अभी उच्चारण की बात ही चल रही थी। स्वसंवेदन सुव्यक्तस, सुव्यक्तस मत बोलो, सुव्यक्तस आप बहुत जल्दी बोल रहे हैं। स्वसंवेदन, चलो स्वसंवेदन बोलो, सुव्यक्तस, सुव्यक्तस,
सुव्यक्तस।
अब सुब बोल करके रुक जाओ थोड़ी देर, सुव्यक्तस,
सुव्यक्तस,
ऐसा स्वसंवेदन सुव्यक्तस,
सुव्यक्तस, सुव्यक्तस।
शाबाश, अब जो लोग नहीं बोल पाए उनको नहीं है शाबाश। तनुमात्रो निरत्ययः,
तनुमात्रो निरत्ययः,
अत्यंत सौख्यवान आत्मा,
अत्यंत सौख्यवान आत्मा,
लोकालोक विलोकनः,
लोकालोक विलोकनः,
स्वसंवेदन सुव्यक्तस,
स्वसंवेदन सुव्यक्तस,
तनुमात्रो निरत्ययः,
तनुमात्रो निरत्ययः,
अत्यंत सौख्यवान आत्मा,
अत्यंत सौख्यवान आत्मा,
लोकालोक विलोकनः,
लोकालोक विलोकनः।
अब देखो ध्यान से जो चाहो वो प्राप्त होता है। सांसारिक राग पूर्वक आप ध्यान करो तो फिर संसार की वस्तुएं मिलेंगी, और आत्मा का ध्यान करो तो दिव्य चिंतामणि स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होगी, अनंत चतुष्टय उपलब्ध होंगे। तो फिर ध्यान आत्मा का करना है तो आत्मा को जानना भी आवश्यक है, आत्मज्ञान होना भी जरूरी है, क्योंकि जिसका ज्ञान नहीं है उसका ध्यान कैसे? जिसको अपन जानते हैं उसी का ध्यान करते हैं। अब किसी अपरिचित व्यक्ति का कोई ध्यान करता है? अपने पुत्र का ध्यान किया जाता है, या फिर अपने संबंधी या मित्र का ध्यान किया जाता है, या शत्रु का किया जाता है, पहचान है। जिसकी पहचान ही नहीं है उसका ध्यान तो नहीं हो सकता। तो आचार्य कहते हैं कि आत्मा का ध्यान करना हो तो फिर आत्मा को पहचानो। कैसा है आत्मा का स्वरूप? आत्मा ही ध्येय है और उसका स्वरूप स्वसंवेदन सुव्यक्त, स्वसंवेदन से सुव्यक्त, सुव्यक्त यानी अच्छी तरह, सु यानी अच्छी तरह से व्यक्त प्रकट। आत्मा को अगर स्वसंवेदन से जान लो, यानी सम्यक ज्ञान से आत्मा की पहचान हो जाए, तो फिर वो आत्मा जैसे सामने कोई वस्तु रखी रहती है वो प्रकट होती है, वैसे आत्मा भी उस ज्ञानी जीव के लिए प्रकट होती है। शरीर आदि से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसको जानने में आती है कि आत्मा भिन्न है। तो स्वसंवेदन सुव्यक्त, स्वसंवेदन से, स्वसंवेदन को दूसरे शब्दों में आत्मानुभव भी कह सकते हैं। आत्मानुभव से जो सुव्यक्त है, प्रकट है, और कैसा है आत्मा? तनु मात्रो, तन माने शरीर, उतना मात्र, उसकी मात्रा यानी उसका जो प्रमाण है, उसका माप, उसकी साइज शरीर के बराबर है। आत्मा का आकार शरीर के बराबर, अपना जैसा शरीर है बस वही आकार इस समय अपनी इस पर्याय में अपनी आत्मा का है। तो ये आकार माने क्षेत्र का भी ज्ञान होना जरूरी है। और फिर काल की अपेक्षा से विचार करो तो आत्मा कैसे है? निरत्यय, अत्यय से रहित, विनाश से रहित, अविनाशी। आत्मा अविनाशी है। अविनाशी का मतलब क्या होता है? कि जिसका कभी भी नाश नहीं होगा। और अनादि से, किसी ने बनाया नहीं इसको, और अविनाशी है यानी कभी भी इसका अंत नहीं होगा। इसकी अवस्थाएं नष्ट हो जाती, जीवन नष्ट हो जाता है, जीव नष्ट नहीं होता। निरत्य है। और कैसा है? अत्यंत सौख्यवान, अर्थ स्पष्ट है इसका, अत्यंत सुख संपन्न है। दुखी तो अपनी भूल से हो रहा है, अगर अपनी भूल छोड़ दे तो सुख का भंडार तो स्वयं है, अपने अंदर ही आत्मा सुख स्वभावी है। अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सुख से संपन्न है, लेकिन उसको भूलकर, उसको छोड़कर ये स्वयं पर पदार्थों में मोहित होकर दुखी हो रहा है। दुख पर पदार्थों में मोहित हुए बिना कभी नहीं होता। किसी भी अन्य वस्तु के प्रति आप मोहित हो रहे हैं तो वही दुख का कारण बनेगा, और कोई दुख का कारण नहीं होता। तो अत्यंत सौख्यवान आत्मा का स्वभाव क्या? कभी भी ध्यान करने बैठना हो तो फिर ये स्वरूप, ये श्लोक याद रख, स्वसंवेदन सुव्यक्त, आत्मानुभव जिसको है उसके लिए आत्मा सुव्यक्त है, अच्छी तरह प्रकट है। और तनु मात्र, उसका आकार प्रकार कैसा है? अपने शरीर प्रमाण। और कैसे? निरत्यय, अत्यय से रहित, विनाश से रहित, अविनाशी। और अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सुख से संपन्न है। और लोका लोक विलोकन आत्मा, लोक और अलोक का विलोकन अर्थात अवलोकन करने वाला यह आत्मद्रव्य जीव है। आज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जिस प्रकार अत्यंत सौख्यवान होते हुए भी आज अत्यंत सुखी नहीं है, क्यों? क्योंकि अपनी भूल के कारण ये पर पदार्थों में अटका हुआ है। इसी प्रकार लोक और अलोक का अवलोकन करने की शक्ति होते हुए भी आज पीछे कौन बैठा है ये भी नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि आवरण है ज्ञान के ऊपर। पर आत्मा अपने आप में इन गुणों वाला है, अभी प्रकट नहीं हो पा रहे हैं ये गुण क्योंकि अपनी कमजोरी है। तो इसका ध्यान करना है कि आत्मा का ये स्वरूप है। और ध्यान कैसे करोगे उसकी विधि बता रहे हैं। वैसे ध्यान की कोई विधि नहीं है। उपसर्ग के समय मुनिराज को अगर कोई ऊपर ले जाकर के वहां से ऐसे पटक दे पानी में, तो वो बीच में पानी में गिरने के पहले ही शुक्ल ध्यान करके केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते, उतने कम समय में उनको केवल ज्ञान हो सकता है। तो ऐसी कोई विधि नहीं है कि आसन में बैठकर ही ध्यान करा जाए। जिन्होंने बहुत साधना कर ली है वो किसी भी अवस्था में ध्यान कर सकते, लेकिन फिर भी प्रारंभ के लिए संयम्य कर्णग्राम, आप लोग स्वराघात पर ध्यान दीजिए, संयम्य कर्णग्राम, कर्णग्राम, संयम्य कर्णग्राम, मेकाग्रत्वेन चेतसः, आत्मानमात्मवान् ध्याये, आत्मानमात्मवान् ध्याये, दात्मनैवात्मनिस्थितम् संयम्यकरणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्याये, दात्मनैवात्मनिस्थितम्। आत्मवान्, आत्मानमात्मवान्, आत्मवान्, आत्मानं ध्यायेत्, आत्मा का ध्यान करें। आत्मवान मनुष्य आत्मा का ध्यान करें। अब आत्मवान का क्या अर्थ होता है? जैसे वो पिछले श्लोक में आत्मानुभव शब्द था, अब उसमें आत्मा शब्द का क्या अर्थ लेना और अनुभव शब्द का क्या अर्थ लेना? जैसे छेड़ाला में अपन ने की थी चर्चा इसकी, पर फिर भी आत्मा शब्द के तीन अर्थ होते हैं और अनुभव शब्द के दो अर्थ होते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि कई बार व्यावहारिक जगत वाला अर्थ अपन लगा लेते हैं तो उसके कारण फिर आगे का जो भी अर्थ निकलता है वो सब मूल से भिन्न हो जाता है। माने पहला शब्द अगर आपने गलत समझ लिया तो फिर आगे जो भी पढ़ेंगे आप, तो नींव गलत होगी तो फिर पूरी इमारत, अब एक घड़ा अगर उल्टा रखा है तो उसके ऊपर आप छह घड़े रख दो लेकिन एक भी घड़ा सीधा नहीं रख सकते। नहीं आया समझ? मटका होता ना ऐसे उल्टा रखा है तो उसके ऊपर आप चार छह सात आठ जितने भी रखना हो रख सकते हैं लेकिन उल्टा रखना पड़ेगा, सीधा नहीं रहेगा एक भी। इसी प्रकार अगर एक शब्द का अर्थ विपरीत हो जाए तो फिर आगम में आगे जो भी अर्थ निकलेंगे उस शब्द से संबंधित वो सब विपरीत ही निकलेंगे। इसलिए आत्मानुभव जिसको बहुत सारे लोग मूल मानते हैं, इसके बिना सब कुछ बेकार है। छह छह महीने के भी अगर साधु तप उपवास कर ले और भयंकर उपसर्ग में भी क्षमा भाव धारण कर ले तो भी अगर आत्मानुभव नहीं हुआ है उनको तो सब व्यर्थ है, वो संसार से पार नहीं हो सकते। उतनी तपस्या और उतना क्षमा भाव उनको देवगति में तो ले जाएगा लेकिन संसार भ्रमण से पार नहीं लगाएगा। वो क्या है आत्मानुभव? तो उसका पहले अर्थ सही समझ लेना आवश्यक। आत्मा के दो तीन अर्थ होते हैं, एक तो जीव द्रव्य को आत्मा कहते हैं, ये आप सब जानते हैं, जीव द्रव्य को आत्मा कहते हैं, ठीक है ना। अब जीव द्रव्य ये शरीर का जो पुद्गल द्रव्य है उससे अलग है तो वो एक आत्मा हुई। और फिर दूसरा आत्मा का अर्थ, एक अर्थ होता है स्वरूप, पहला अर्थ तो हो गया जीव द्रव्य, दूसरा अर्थ हो गया किसी भी चीज का जो स्वरूप है उसको भी आत्मा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये जो सामने दान पेटी रखी हुई है, इस पेटी को अगर संस्कृत भाषा में अपन कुछ इसके विषय में लिखना चाहें या बोले तो फिर ये जिसके द्वारा रची हुई है उसका भी उल्लेख उसमें आ जाएगा। जैसे ये पेटी अगर लोहे की बनी हो तो फिर इसको लोहात्मक बोलेंगे, पीतल की बनी हो तो तदात्मक बोलेंगे। तो आप समझ रहे हैं बात को, जो शब्द आ रहा है ना लोहात्मक, उसमें जो आत्म शब्द आया है आत्मा, वो तो बहुव्रीही समास हो जाने के कारण वो क प्रत्यय कर दिया उसमें, लोहात्मक बन गया। वैसे मूल में लोह और आत्मा ये दो शब्द थे और लोह और आत्मा का समास करने के कारण लोह आत्मा यस्य स लोहात्मक, लोहा है आत्मा जिसकी, यानी रचना जिसकी, स्वरूप जिसका, वह लोहात्मक हो गया। तो आत्मा का दूसरा अर्थ क्या हुआ? स्वरूप। फिर आत्मा का तीसरा अर्थ भी होता है, समय सार ग्रंथ में एक गाथा है, आइए आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने दी है। यहां पर इन्होंने टिप्पण में उसकी एक पंक्ति शायद छोड़ दी या छपने में रह गई होगी, ये तो गाथा की दो पंक्तियां थी, ये नीचे वाली पंक्ति तो उसमें लिखी हुई है उस प्रति में सूरत से जो निकली थी उसमें। ताणी पुण जान तिन्नी भी अपाणम जीवन इच्छेद, उसके ऊपर वाली जो पंक्ति है वो ऐसी है, दंसनाण चरिताणि सेवितव्याणि साहुणाणि चम ताणि पुण जान तिन्नी भी अपाणम जीवन इच्छेद। समय सार की 16वीं गाथा है, दर्शन ज्ञान और चारित्र इनकी उपासना साधु को नित्य करना चाहिए। मतलब दर्शन ज्ञान और चारित्र को क्या कहते हैं, एक शब्द, जैसे भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष इन देवों को एक शब्द में क्या बोलते हैं, भवनत्रिक, और दो इंद्रिय तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय जीवों को एक शब्द में क्या बोलते हैं, विकलेंद्रिय, ठीक है ना। वैसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को एक शब्द में क्या बोलेंगे, रत्नत्र। तो ताणिपुण जान तिन्नी भी इन तीनों को ही अपाणम जीव निश्चय निश्चय से आत्मा जानो। तो आत्मा किसको जानो कह रहे हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी, रत्नत्रय। पहली पंक्ति में क्या कहा कि रत्नत्रय की सेवा साधु को हमेशा करनी चाहिए। साधु की सेवा श्रावक करें वो एक अलग बात है, लेकिन साधु को किसकी सेवा करना, रत्नत्रय की। और इन्हीं को निश्चय से क्या जानो, आत्मा। तो कुल मिलाकर रत्नत्रय का सेवन करने वाले साधु अपनी आत्मा का ही सेवन करते हैं। तो आत्मा का तीसरा अर्थ क्या निकला, रत्नत्रय। तो आत्मवान का क्या अर्थ बनेगा, अथवा अपन अभी आत्मानुभव की चर्चा कर रहे थे, तो आत्मानुभव में आत्मा के तो ये तीन अर्थ हो गए, पर अनुभव शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो अनुभव शब्द का अर्थ होता है एहसास, और वो एहसास जो होता है वो अपना एहसास अपने ही कोई होता है। मान लो आपको मच्छर काट रहा है तो बाजू वाला नहीं खुजाएगा, उसका अनुभव किसको होगा, जिसको काटा है उसकी। तो अनुभव का एक अर्थ हो गया एहसास, और ये व्यावहारिक जगत में बहुत प्रसिद्ध है। अनुभव का अर्थ होता है एहसास, फील करना, महसूस करना, अनुभव करना, एक्सपीरियंस, उसको एक्सपीरियंस भी कहते हैं अनुभव, ठीक है ना। फिर अनुभव का दूसरा अर्थ क्या होता है, निकट परिचय। निकट परिचय को भी अनुभव कहते हैं। अब वो निकट परिचय, इसका अर्थ एक्सपीरियंस हो ये जरूरी नहीं है। निकट परिचय पर वस्तुओं का भी होता है, इसलिए उसको अपन वो वाला अनुभव नहीं कह सकते, क्योंकि वो वाला जो अनुभव होता है वो केवल अपने से संबंधित होता है। अब जैसे मान लो हमने उस समय दृष्टांत ये दिया था, मतलब सही पहचान होना, ये उस अनुभव शब्द का दूसरा अर्थ है। और अनुभव शब्द का एक अर्थ तो होता है एहसास होना। तो सही पहचान होना, जैसे 20 साल हो गए शादी को, उसके बाद फिर पति बोलता है कि आज पहचाना तेरे को। तो इतने 20 साल क्या कर रहे थे भाई, 20 साल तक जान रहा था और 20 साल के बाद पहचान, आ रहा समझ में। तो इस प्रकार अपनी आत्मा की सही पहचान हो जाना आत्मानुभव का एक अर्थ होगा, और फिर आत्मानुभव का दूसरा अर्थ होगा अपनी आत्मा का एहसास होना। अब यहां एहसास शब्द को अगर अपन ले लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं जो सामने वाले को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देते हैं, मतलब वो भ्रमित हो जाता है। जैसे जितने लोग ये मानते हैं कि आत्मानुभव का अर्थ होता है कि एकदम क्षण मात्र के लिए अंतर्मुख होकर अपनी आत्मा का एहसास कर लेना, शरीर से भिन्न अपनी आत्मा का एहसास कर लेना, वो आत्मानुभव। और अपनी आत्मा माने जीव द्रव्य, आत्मानुभव में से आत्मा का अर्थ क्या निकला? जीव द्रव्य, रत्नत्रय अर्थ नहीं निकला, और वो स्वरूप वाला का अर्थ नहीं निकला। स्वरूप यानी ये लोहे का जो, वो तो पुद्गल जीव सब में लगेगा, स्वरूप जो है वो सब द्रव्यों में होता है। पर फिर आत्मानुभव का अर्थ ये निकला कि जीव द्रव्य का एहसास। अब यहां पर जीव द्रव्य का एहसास अगर करते हैं, जो आत्मानुभव का अर्थ ये मानते हैं कि जीव द्रव्य का एहसास होता है, तो फिर वहां पर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। एक प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि जीव द्रव्य रूपी है या अरूपी है? अरूपी है। तो अरूपी का एहसास अपन ने अपने कौन से गुण द्वारा किया है? चारित्र गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, कौन से गुण से अपन अनुभव करेंगे? ज्ञान गुण से। अब ज्ञान गुण से अनुभव किया अपन ने उसका, जीव द्रव्य का और अरूपी का। अब अरूपी का अनुभव अपन ने जिस ज्ञान गुण से किया, उस ज्ञान गुण की कौन सी पर्याय से अपने को अरूपी का अनुभव हुआ? ज्ञान गुण की पांच पर्याय है, सम्यक ज्ञान की, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये तो तय है कि अपने पास केवल ज्ञान और मन परे ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान कपड़ों में नहीं होते, ये ज्ञान मुनियों को ही होते हैं। अब बचे तीन, तो तीन जो बचे हैं उसमें से क्या मति ज्ञान अरूपी को ग्रहण कर सकता है? मति ज्ञान क्या अरूपी को ग्रहण कर सकता है? तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, मति ज्ञान इंद्रिय और मन के ही निमित्त से पदार्थ को जानता है। कौन से पदार्थ को जानता है? जो उसके विषयभूत पदार्थ है उसको जानता है। तो फिर मति ज्ञान से तो आत्मानुभव नहीं बनेगा, जो आत्मानुभव अभी अपन ले रहे हैं वो नहीं बनेगा। फिर अब कौन सा ज्ञान है दूसरा? श्रुत ज्ञान। अब श्रुत ज्ञान जो होता है, क्या श्रुत ज्ञान अरूपी को जानता है? हाँ या ना? घबराने की कोई बात नहीं, गलत, जानता है। और आप पूछेंगे कैसे आप कह रहे हैं महाराज, फिर तत्वार्थ सूत्र के आगे का सूत्र देख लो। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेश्व, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का जो विषय होता है वो छहो द्रव्य है, लेकिन उनकी कुछ पर्याय मति और श्रुत ज्ञान का विषय बन पाती है, सब पर्याय नहीं बनती। तो अब अरूपी की बात अपन कर रहे थे, तो अरूपी को मति ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो फिर वो किसी अपेक्षा से कर रहा है। मन संबंधी जो मति ज्ञान है वो ये जान रहा है कि आकाश नाम की कोई वस्तु है, आकाश अब अरूपी है ना, तो उसको जानता तो है कि आकाश है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, ऐसे जानता तो है। लेकिन यहां पर चर्चा अपनी क्या चल रही है? अनुभव की। तो अनुभव का अर्थ यहां पर एहसास लेकर के चल रहे हैं, तो एहसास नहीं हो सकता। और फिर श्रुत ज्ञान की जहां तक बात है, तो श्रुत ज्ञान के बारे में उपदेशहीन द्रव्यतः क्षेत्रतः कालतः भावतश्च जाना थी, जिनवाणी के उपदेश से ये आकाश आदि द्रव्यों को श्रुत ज्ञान भी जानता है। वरना साक्षात अगर देखें तो श्रुत ज्ञान किसको जानता है? श्रुतम मति पूर्व, मति ज्ञान ने जो मसाला दिया है उसी को विशेष रूप से श्रुत ज्ञान जान लेता है। मति ज्ञान ने किसी का चेहरा दिखला दिया, आंखों से आपने किसी को देखा, वो मति ज्ञान हो गया। अब उसके बाद में आप उसके बारे में विचार करते हैं कि इसने मेरे पैसे लिए थे अभी तक नहीं लौटा है, ये श्रुत ज्ञान हो गया। और फिर राग द्वेष करते हैं तो वो कषाय हो गई, वो ज्ञान नहीं हुआ। स्मृति आई कि इसने मेरे पैसे लिए नहीं लौटा है, यहां तक तो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान है, मति और श्रुत ज्ञान का यहां तक क्या है। और उसके बाद फिर और गहराई से जितना भी चिंतन करते जाते हैं वो सब श्रुत ज्ञान में चला जाता है, राग द्वेष करते हैं कषायों के विभाग में जाता है। इस प्रकार सबका हिसाब किताब बटा हुआ है, सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं अपनी आत्मा में। कषायों का एक डिपार्टमेंट है मोहनी से संबंधित, जानने का एक डिपार्टमेंट, एक विभाग है, वो ज्ञान गुण से संबंधित, देखने वाला विभाग जो दर्शन गुण से संबंधित, सुख वाला एक अलग हिसाब किताब, शक्ति वाला एक अलग हिसाब किताब, सब अलग अलग विभाग बटे हुए। तो फिर मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान से आत्मा का एहसास करना, ये जो मान्यता है ये आगम से प्रमाणित नहीं होती। और फिर पूजाओं में एक जगह कहीं पर एक पंक्ति आती है, आपको अगर याद हो कौन सी पूजा है तो फिर आप बताना हमें, पंक्ति हम आपको बता रहे हैं, चार ज्ञान धर ना लखे,